भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 31। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्योऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितां श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, कैसे? परंतु कैसे? ईर्ष्या रहित। आदेशों के अनुसार तो कर्म करते हैं पर द्वेष रहित। कैसे? द्वेष रहित, सॉरी, द्वेष रहित कर्तव्य कर्म करना बहुत कठिन है, नहीं? वो भी भगवान के उपदेशों के अनुसार। भगवान के उपदेशों के अनुसार कर्तव्य करना, कर्तव्य कर्म करना आसान है कि कठिन है? क्या है, कठिन है कि आसान है? कठिन है। माया के उपदेश के अनुसार कर्तव्य कर्म करना भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे उपदेश के अनुसार जो अपने कर्तव्य कर्म करते हैं वो भी ईर्ष्या रहित होके। एक तो उपदेशों का पालन करना कठिन है, परंतु उस व्यक्ति को जरा पूछ के देखिए जो कृष्ण में रम गया है, कृष्ण में जिसकी मति लग गई है, जरा उस व्यक्ति को पूछ के देखिए कि आप कर्तव्य कर्म करते हो कितनी कठिनाई जाती है आप, जरा पूछ के देखिए।
तो अंतर क्या है? कर्तव्य कठिन है कि कर्तव्य तो वही है, कर्तव्य कर्म तो वही है जो सभी को करने होते हैं, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कर्तव्य कर्म करके सब लोग? अपने परिवार का पालन पोषण कर, इसके अलावा कोई क्या कर रहे हैं? वही है, बात तो एक ही है। कर्तव्य कर्म करके व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अच्छा जीवन जीता है, नहीं अच्छा जीवन जी सकता है, सभी यही कर रहे हैं। परंतु वो व्यक्ति जो भगवान पे भगवान के उपदेशों का पालन करते हुए या भगवान में रममान है, ऐसा व्यक्ति कैसे कर्तव्य कर्म करता है? वह भी तो वही करता है जो हम करते हैं, वो कुछ अलग करता है? उसको भूख नहीं लगती क्या? भूख भी तो उसको लगती है, वस्त्र भी तो उसको चाहिए, निवारा भी तो उसको चाहिए, अन्न वस्त्र निवारा जो हमको चाहिए वो सब चीजें उसको भी चाहिए, वो भी प्राप्त करता है, हम भी प्राप्त करते हैं, उसको कठिनाई नहीं होता है, हमको कठिनाई होती है, क्या कारण है? नहीं, ईर्ष्या तो आगे आएगा, उसके बाद ईर्ष्या है, ऐसा क्या कारण है? एक ही बातें करते हैं परंतु उसको उपदेशों का पालन करना आसान होता है, हमको उपदेशों का पालन करना कठिन होता है। भगवान ने एक बहुत सुंदर शब्द इसमें कहा है, क्या कहा है आगे पढ़ते हैं, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते, श्रद्धावंतो अनसुयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। परंतु कैसे? श्रद्धा पूर्वक। अंतर क्या है? श्रद्धा, मैटर व्हाट मैटर्स इज फेथ, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वास्तव में श्रद्धा क्या है? अभी हजारों वर्ष से सुनते आ रहे हैं, श्रद्धा श्रद्धा क्या है? श्रद्धा साधे शब्द में बताइए क्या श्रद्धा है? इंग्लिश में फेथ कहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा अर्थात फेथ नहीं, वेद को तो बदल सकते, फेद अर्थात विश्वास, विश्वास का अविश्वास भी हो सकता है, जानना और मानना, भगवान को जानना और फिर मानना, या मानना और फिर जानना, जानकर मानते हैं तो मानकर जानते हैं, पहले जान लो अच्छे से फिर मान लो, बिना इंफॉर्मेशन के कैसे मानेंगे? पहले जानना पड़ेगा, वो तो ठीक बात है, पर श्रद्धा इसका सोपा सीधा सरल उत्तर क्या है? आपको क्या लगता है श्रद्धा का अर्थ क्या है? देखिए डिफरेंस क्या है, पहला प्रश्न ये है, दो प्रकार के लोग हैं, एक जो है भगवान के उपदेशों का पालन करते श्रद्धा को, अर्थात एक लोग है जो भगवान को समर्पित है, समर्पित होकर कर्म करते हैं उनके उपदेशों के अनुसार, और दूसरे लोग हैं माया को समर्पित होकर कर्म करते हैं माया के उपदेशों के अनुसार। कर्म तो दोनों सेम ही करते हैं, अन्य वस्तु निवारण दोनों को ही चाहिए, फिर फर्क क्या है? फर्क है श्रद्धा में, इसका जो माया का उपदेश पालन करता है उसकी श्रद्धा माया में है, लेकिन जो कृष्ण के उपदेशों का पालन करता है उसकी श्रद्धा कृष्ण में है, लेकिन यही फर्क है ना? फर्क क्या है? शुरुआत तो श्रद्धा से होती है, प्रेम तो बहुत ऊपर की स्थिति है। प्रेम तक कब पहुंचेगी, जब श्रद्धा होगी तभी ना। विश्वास तो विश्वास बदल सकता है। तत्व से जानना, जानना तत्व से जानना, फिर उसको उसका स्वीकार करना, जानना फिर स्वीकार करना, फिर उसका चिंतन करना, और चिंतन करके उसको आत्मसात करना। तत्व से जानना, जानकर उसका चिंतन करना, चिंतन करके उसको आत्मसात करना। आत्मसात करने का अर्थ क्या होता है? प्रैक्टिकल। आत्मसात किया था तभी आप उसको प्रैक्टिकल ही करोगे, आचरण। आत्मसात करने का अर्थ है आचरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पहले जानना। अभी समझो आपको पता ही नहीं कृष्ण कौन है। हमको पता ही नहीं है कृष्ण कौन है, तो हमारा पहला काम क्या होगा? कृष्ण को जानना। टू नो कृष्ण। कैसे जानेंगे कृष्ण को? जो कृष्ण को जानता है उससे पूछेंगे, वो कैसे बताएगा हमको कृष्ण क्या है? जो जानता है वो हमको कैसे बताएगा कृष्ण क्या है? उसने अनुभव किया है। कैसे अनुभव किया है? उसने लॉ बुक पढ़ा है, ये संविधान पढ़ा है, संविधान अर्थात शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र उसने अनुभव, शास्त्र का अध्ययन किया है, उसका अनुभव किया है, शास्त्र का अनुभव करके उसको उसने आत्मसात किया है, उससे उसका अनुभूति हुआ है, और वो व्यक्ति अभी अनुभव करता है, प्रत्येक कर्म को कृष्ण के साथ जोड़ता है और कृष्ण की उसको अनुभूति होती है। ऐसे व्यक्ति को हम पूछें, ऐसे व्यक्ति से हम जानेंगे कृष्ण क्या है, तो जान लेंगे। जानने के पश्चात वह व्यक्ति कहेगा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसा कहेंगे वो, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया ईश्वर कौन है। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह। कब से हैं? अनादिर आदिर गोविंद, ना उनके पहले कोई होगा ना उनके बाद पश्चात कोई होगा। ही इज द ओनली एंड ओनली। अनादिर आदिर कैसे कौन है? गोविंद आनंद देने वाले, और क्या है? सारे कारणों के कारण है ना, यह वो बताएंगे हम। अब जब यह हमको वो बताएंगे, इतना हमने जान लिया है, अब हम इसको मानेंगे क्या? अर्थात जो हमने जान लिया है इसको हम यदि मानते हैं तभी जाके इन विषय पे चिंतन करेंगे। फ्राइडे भगवद गीता कितना भी होने दीजिए, यदि हमने इसको माना, इस सत्संग में जो होता है, तभी हम इसमें जो होता है उसके ऊपर चिंतन करेंगे, अन्यथा हम चिंतन ही नहीं करेंगे। और चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन ही नहीं करेंगे तो क्या आत्मसात करेंगे? और आत्मसात ही नहीं करेंगे तो क्या श्रद्धा होगी? चिंतन ही, केवल जानकारी, केवल जानना। बहुत से लोग इसी पे बहुत महत्व देते हैं, केवल जानकारी रखना। हमारे पास सबकी जानकारी होनी चाहिए, भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत ईशोपनिषद उपदेशामृत जैव धर्म, सबकी क्या चाहिए हमको? जानकारी। जानकारी से काम चलेगा? आपके पास जानकारी है, स्वर्ग में अमृत मिलता है, है कि नहीं, सबके पास जानकारी, सभी के पास जानकारी है नहीं, तो अब क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? जानकारी रखे है, जानकारी रखने से कोई लाभ नहीं होता है, भ्रम है वो। सारे शास्त्रों की जानकारी रखते हुए अनेकों शास्त्रों के कोटेशन देते बैठना, ये केवल जानकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। परंतु जो कोटेशन जो हम शास्त्रों का आधार लेके कहते हैं, उसको मानते हुए उसका चिंतन करना और उसको जीवन में अप्लाई करना, उसको आत्मसात करना, तभी कहा जाएगा कि इस व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा है। यदि आचरण नहीं है तो कदापि हम नहीं समझेंगे कि हमारे पास श्रद्धा है। आचरण नहीं है तो श्रद्धा नहीं है, भ्रम है, भ्रम है, अपने मन का रंजन, मनोरंजन है। इसमें भी मनोरंजन होता है नहीं, संसार में हम देखते हैं। तो इसलिए भगवान यहां पे कहते हैं, मत कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये मैं मतम इदम मत नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, अर्थात मत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं श्री भगवान। भगवान को अर्जुन ने पहले ही श्लोक में पूछा था, क्या पूछा था? अर्जुन ने कहा था, जायसी चेत कर्मणः ते मतः बुद्धि जनार्दन, जायसी चेत सा कर्म, हे जनार्दन, आपके मत से, कर्म से या कर्म के अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म में क्यों फंसा रहे हो? ऐसा पूछे थे ना अर्जुन से, स्मरण में है? क्या पूछे थे? पहला ही श्लोक है, पढ़िए श्लोक, आपके पास है, जायसी चेतः कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन, आपके मत से, जनार्दन आपके मत से ऐसा है, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, आप ही ने कहा है, ऐसा अर्जुन ने पूछे थे पहले श्लोक। तो मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? इसके उत्तर में भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, इसके उत्तर में भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, फिर से मतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उस श्लोक में अर्जुन ने कहा था आपके मत के अनुसार, अब भगवान कह रहे हैं मेरे मत के अनुसार, उत्तर दे रहे वो प्रश्न का। वो भगवान यहां पे जो कहते हैं वो भिन्न बात है। भगवान कहते हैं मेरे मत के अनुसार जो मैंने पिछले श्लोक में बात कही थी वो है। पिछले श्लोक में क्या बात कही थी? आध्यात्मिक चेतना के द्वारा अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करके युद्ध करो। क्या कहा था भगवान ने पिछले श्लोक में? आध्यात्मिक चेतना के द्वारा, किसके द्वारा? अपने समस्त कर्म को मुझे अर्पण करके युद्ध करो, ये मेरा मत है। अर्जुन ने क्या कहा था? आपके मत के अनुसार कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो मैं युद्ध क्यों करूं? तो भगवान कह रहे मेरे मत के अनुसार आध्यात्मिक चेतना के द्वारा कर्म करके, कर्म मुझे अर्पित करते हुए युद्ध करो। हो गया उत्तर? हो गया कि नहीं हुआ? अर्जुन ने भगवान का मत कुछ और समझा, लेकिन भगवान ने अपना मत क्लियर कर दिया, मेरे मत के अनुसार। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 राम।
यह मत जो शब्द है बहुत महत्व का है।
भगवान कह रहे मेरे मत के अनुसार,
कोई साधारण व्यक्ति कह रहा है कि मेरे मत के अनुसार,
मेरे मत के अनुसार। आप भगवान का मत सोचिए, भगवान का ओपिनियन, कौन नहीं भगवान के पीछे पड़ेगा भगवान का ओपिनियन जानने के लिए? कोई है संसार का ऐसा जो नहीं पड़ेगा? अरे भगवान आपका ओपिनियन वही तो दिक्कत है, हमको आपका मत ही तो समझता नहीं है, क्या होगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी क्या। भगवान का मत क्या है ये समझने के लिए योगी तपस्वी लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या साधना करते हैं, फिर भी उनको भगवान का मत पता नहीं चलता है। हमारे कलयुग के जीवों का भाग्य देखो कितना महान है, भगवान अपना मत सीधे सीधे प्रकट कर रहे हैं सभी के लिए। मेरा मत ये है भाई, क्या है? आध्यात्मिक चेतना से कर्म करो। और कैसे? आध्यात्मिक चेतना से जो कर्म करोगे उसको मुझे अर्पित करके युद्ध करो, अर्थात मेरे लिए कर्म, ऐसा मेरा मत है, इसके ऊपर तुम्हारी मर्जी। भगवान कहते ये तो मेरा ओपिनियन है, दिस इज माय ओपिनियन, बट यू आर फ्री। ये मेरा मत है लेकिन आपको स्वतंत्र है, आपको अपना मत रखने का अधिकार है। आपको केवल अधिकार ही नहीं, आप अपने मत को रखकर उसको चिंतन मनन करके उसका पालन भी कर सकते हो, जो कि सारा संसार कर रहा। भगवान के मत को आखिरी चांस, सारा कुछ होने के बाद कुछ एनर्जी बची तो भगवान को पूछेंगे, भगवान का मत जानेंगे, समय नहीं मिला तो वो भी कहां जानेंगे। शास्त्र के आधार पे बहुत लोग विपरीत अर्थ भी करते हैं, बहुत विचित्र अर्थ करते हैं। वो कहते हैं यत मत तत पथ, एक ऐसी लोग अपने क्या कहते हैं कहावत, ये मत ये शब्द के आधारित एक कहावत है, यत मत तत पथ, यत मत तत पथ पथ। हाँ क्या कहते हैं भाई, जिसका जैसा मत है उस व्यक्ति के लिए वो मार्ग ही क्या है, वही पथ सही है। जिसका जैसा मत उसका वो पथ, सत्य बात है क्या? जिसका जैसा मत उसका वो पथ, अर्थात उसी के उसके लिए वही पथ है, उसके लिए वही मार्ग है। जिस व्यक्ति का जैसा मत या विचारधारा होगी उसके लिए वही उसके जीवन के लिए वह मार्ग रहेगा। क्या आप लोग इस पे सहमत हैं? डू यू एग्री? क्यों? मान लो एक व्यक्ति, उनका मत है कि यदि मांसाहार नहीं किया, यदि जानवर को नहीं खाया तो एक दिन इस संसार में इतने जानवर हो जाएंगे कि मनुष्य को रास्ते में चलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं समाज के, वो सोचता है कि समाज के ऊपर उपकार करने के लिए वो मांस खाता है, ये उसका मत है, इसलिए उसने मांसाहार का पथ चुन लिया है, तो उसका वैसा मत है इसलिए उसका वो पथ है। आपका क्या विचार है, सही है, सहमत है, नहीं है इससे? क्यों? कैसे पता चलेगा कि ये मत सही है कि गलत है? तो शास्त्र को तो वो जानता ही मानता ही नहीं ना, है ना। आज एक भक्त ने जोरदार मैसेज भेज दिया सबको, हे कृष्ण कृष्ण बंद करो, मैं तो सबको गाली दूंगा, है ना, बस करो कृष्ण कृष्ण। इसका वो मत है, इसलिए उसने वो पथ चुन दिया। आप भले ही बोलेंगे कृष्ण भगवान है, भगवत गीता है, रोज सैकड़ों बड़े बड़े मैसेज जाते हैं, वो तो कंटाल गया उससे, वो तो भ्रष्ट हो गया बेचारा, है कि नहीं, वो तो हैरान हो गया, है कि नहीं। तो उसका मत जो है वो उसका पथ है। आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, जो व्यक्ति कृष्ण या कृष्ण के उपदेश, ये कृष्ण नाम रूप गुण लीला, इन विषयों पे भ्रष्ट हो सकता है, तो सोचिए सांसारिक विषयों पे वो व्यक्ति कितना भ्रष्ट होगा। कृष्ण नाम रूप गुण लीला, कृष्ण कथा, कृष्ण उपदेश, इसमें कोई टेंशन वाली बात है? आपको कुछ टेंशन आता है कथा होते? कोई पैसा वैसा लगता है, धन, कुछ फीस, कोई बीमारी लगती है, कुछ उससे यदि किसी को फ्रस्ट्रेशन होता है या उसको यदि कोई नहीं मानता है, तो आप क्या विश्वास कर सकते कि ये व्यक्ति जीवन में किसको भी मानता होगा? इतनी आसान बात है, इसमें कुछ नुकसान नहीं है, आनंद वाली बात है, कुछ फीस नहीं है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक भौतिक बौद्धिक सारे लाभ इससे होने वाले हैं। इस विषय से इस व्यक्ति को रुचि नहीं है, या इन विषयों पे ये व्यक्ति उदासीन है, या इन विषयों से व्यक्ति फ्रस्ट होता है, तो क्या ये व्यक्ति आपको विश्वास है, या आपको इतना उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये व्यक्ति सांसारिक विषयों के प्रति सुखी रहा होगा या रह सकता है? इतनी प्योर गोल्ड डायमंड, इतना शुद्ध प्रेम जिसमें है, उसमें उसको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन में क्या आएगा? जिसमें निस्वार्थ प्रेम भाव है, भगवान के उपदेशों में क्या स्वार्थ है? जिसमें निस्वार्थ भाव है उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है, जिसमें निस्वार्थ प्रेम है उसमें फ्रस्ट्रेशन या उदासीनता आती है, तो जिसमें फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी है उसमें क्या आएगा? मल्टीप्लाई होगा ना, है कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा। तो जो लोगों के मत इस प्रकार से यत मत तत पथ, इस बात को जो मानते हैं, वो सब लोग कैसे हैं? फ्रस्ट्रेटेड, उदासीन, फ्रस्ट्रेशन में, प्रेशर में, तनाव में, तनाव का जीवन जी रहे, बहुत तनाव में। आध्यात्मिक बातों के प्रति यदि उनमें तनाव आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पे ये समझ सकते हैं कि सांसारिक या भौतिक स्तर पे वो लोग बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेटेड है, भयंकर। अभी आज नहीं हो गए तो कल पक्का हो गई, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है फ्रस्ट्रेशन किसमें है। दिव्य विषय जो है, जिसके प्रति जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, उसको समझ नहीं रहे, अपने मत को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान इसलिए कहते हैं, मेरा मत ये है कि मेरे मत के अनुसार तुम ये उपदेशों का पालन करोगे श्रद्धा पूर्वक, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अंत में क्या कहते हैं? सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इतना सुपर शॉर्ट सॉल्यूशन है, इतना सुपर शॉर्ट कैप्सूल है, एक खा लो मुक्त हो जाओ, एक सुपर शॉर्ट कैप्सूल। क्या करो? भगवान का मत यह है कि उनके उपदेशों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करो, वो भगवान को अर्पण करो श्रद्धा से। अब बहुत बार प्रश्न निर्माण होता है, श्रद्धा बढ़ाए कैसे? कौन अपनी श्रद्धा बढ़ाना नहीं चाहता है? जो भक्त है, भक्त सात्विक लोग है, वो तो अपनी श्रद्धा बढ़ाने का प्रयास ही करते हैं, नहीं करते हैं? श्रद्धा हम बढ़ाना चाहते हैं, परंतु ऐसे ही होता है ना जैसा भगवान कहे हैं कि हम इसके उसके मत से प्रभावित हो जाते हैं, है ना। ये मत तत्, है ना, इसके मत के अनुसार तत्पथ वो पथ को अपन अपना लेते हैं, यत मत तत्पथ उसका पथ अपन ले लेते हैं, उसने कहा इसने कहा, इसलिए हमने वचन हमने संकल्प किया है जितने भी हमारे हम सत्संग करेंगे चर्चाएं करेंगे उसमें यदि किसी ने हमको ये प्रश्न पूछा लोग कहते हैं तो हम उसका प्रश्न आगे सुनेंगे ही नहीं। प्रभु जी लोग कहते हैं स्टॉप दे, हमको नहीं सुनना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उनका मत प्रदर्शित कर रहे हैं। अब मत क्या, अभी मान लो अंधा व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति है, उनको अपने गंतव्य अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, अपने गोल के लिए जाना है। 10-12 अंधे लोग उनका दो सभी का गोल एक ही है, मान लो दिल्ली जाना है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, एकदम अंधे प्योर 100%, अब निकल पड़े दिल्ली जाने के लिए, सबको तो दिल्ली जाना है, निकल पड़े कैसे जाएंगे, एक जाएगा कलकत्ता, एक जाएगा मद्रास, एक जाएगा नागपुर, सबको किसको भी दिखता नहीं है जाना दिल्ली है, लेकिन क्या कर रहे हैं सोच रहे मेरे मत के अनुसार इधर ही दिल्ली है, मेरा मत ये है इस दिशा में ही दिल्ली है, और सब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। बताओ उद्देश्य सबका एक ही है और सब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, होना क्या चाहिए। क्या होना चाहिए, उसने पहले पूछना चाहिए ना, किसको पूछना चाहिए, जिसको दिखता है जिसको पता है, जिसको दिखता है जिसको पता है उसको जब वो पूछेंगे तो वो जिनको आंखें हैं वो व्यक्ति उनका पथ प्रदर्शन करेंगे ना, नहीं करेंगे, उनका पथ प्रदर्शन करेंगे। और जो अलग अलग दिशाओं में जो 12-13 लोग जा रहे हैं सब, उनको एक आंख वाला एक व्यक्ति, आंख वाली एक व्यक्ति उन सबको जो इधर उधर भटक रहे हैं अंधे उन सबको एकत्रित करके सीधा दिल्ली का मार्ग दिखा सकती है। कौन दिखा सकते हैं, जिनको चक्षु ज्ञान चक्षु उसको कहते हैं, जिनको आंख है, कौन सी आंख, ज्ञान की आंख, उनकी वो उनको क्या करेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, उनका पूरा मार्गदर्शन करेंगे, उनके जीवन में उत्साह बढ़ाएंगे, उनको दिल्ली का वर्णन कराएंगे और उनको बराबर उनके गंतव्य पे पहुंचा देंगे, उनका उत्कर्ष होगा जीवन में। परंतु वही वो अंधे लोग सोचेंगे नहीं, यत मत तत पत, मेरा मत है मैं जानता हूं, मेरा मत है इधर ही दिल्ली है, मेरा मत ये है माया ही सब कुछ है, कृष्ण भी माया है, विष्णु भी माया है, सब माया है, ये मेरा मत है। तो ये व्यक्ति जीवन भर माया में ही तो रहेगा ना, क्योंकि इसको माया का इतना प्रभाव हो चुका है कि माया के आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो माया का ही प्रभाव जीवन में रहेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास जाना जरूरी होता है जो व्यक्ति को आंखें है दृष्टि है, जिसके पास ज्ञान चक्षु है, वो ज्ञान चक्षु वाले हमको दिशा दर्शा सकते हैं, पथ प्रदर्शन कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हमको क्या हो सकता है, हमारे भक्ति में उत्साह आ सकता है, हमारी श्रद्धा का स्तर बढ़ सकता है। श्रद्धा का स्तर बढ़ाने के लिए भगवान ने बहुत सारी उपाय योजना करके रखी, शास्त्रों ने भी बहुत सारे उपाय बना करके रखे, केवल हमको उसका पालन। अभी कार्तिक मास चल रहा है, आपको पता है सबको कब से शुरू हुआ? 8 तारीख शरद पूर्णिमा से। जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक मास, कार्तिक यह नाम कार्तिकी देवी के नाम से होता है। कार्तिकी देवी कौन है? श्रीमती राधा। इस मास को कहते हैं नियम सेवा मास। ये क्यों करते हैं नियम सेवा? कि अपनी श्रद्धा का स्तर ऊंचा उठे, दिव्य प्रेम का अनुभव हो, भगवान का जो मत है वही अपना मत हो, भगवान का मत कुछ और, हमारा मत कुछ और, हमारे परिवार का मत कुछ और, हमारे मित्रों का मत कुछ और, कितनी भिन्नता है। इसका भी किससे मत एक साथ जो मेल नहीं खाता। कम से कम भगवान के मत से तो सबका मत मिलना चाहिए, किससे मिले नहीं मिले, भगवान के मत से मिलना चाहिए। भगवान के मत से अपना मत मिलने के लिए हमको हमारा श्रद्धा का स्तर ऊंचा उठाना होगा। श्रद्धा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए थोड़ी तपस्या करनी होगी, थोड़े मन को थोड़ा ट्रेनिंग देना होगा। हमारा मन बड़ा चंचल है, बंदर के जैसा है, नाचते रहता है, ढोलते रहता है, कभी भी मन बैठता नहीं है। एक जगह बैठा है तो भी खुजाते रहता है, बंदर के जैसा है, बहुत विचित्र है। कभी इधर उधर भटकता है, कभी यहां ले जाता है, कभी अमेरिका तो कभी कलकत्ता तो कभी ऑस्ट्रेलिया तो कभी कहां दिल्ली, कभी इलेक्शन में तो कभी क्रिकेट में, है ना, कभी गरबा में तो कभी और काय में, और कुछ भी नहीं है समझो तो। बंदर को मान लो कुछ भी कार्य नहीं है करने के लिए, इस डाली से उस डाली पे नहीं उठना है उसको, बस बैठ गया है, कुछ नहीं करना है, पेट भर गया है। जब बंदर का पेट भरा होता है तो बैठ जाता है एक जगह, लेकिन जब वो एक जगह बैठता है तो क्या करता है? खुजाते रहता है अपना शरीर, चुप नहीं बैठेगा। बैठेगा, आपने देखा कभी कभी बंदर को ऐसा शांत समाधि में बैठे हुए देखा है? कभी नहीं। इसलिए ये मरकट है, हमारा मन क्या है? मरकट है, बंदर है, स्थिर नहीं हो सकता, नहीं बैठता। इस मरकट को, इस मन को शांत करने के लिए, इस मन को एक जगह बैठाने के लिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग से तो कुछ भी नहीं मिलता है ना इस संसार में, आपको ये तो पता ही है। प्रैक्टिस के बिना, ट्रेनिंग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है, अभ्यास करना ही पड़ेगा तभी मार्ग मिलेंगे। सो मन को ट्रेनिंग देना होता है, और मन को ट्रेनिंग देने के लिए किस प्रकार का ट्रेनिंग देना है? उच्च कोटि का, ऐसा वैसा नहीं, उच्च कोटि का ट्रेनिंग देना है, जो कि भगवान के मत के अनुसार, और वो है शास्त्र में उसका वर्णन। हरिभक्ति विलास, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कार्तिक मास का वर्णन दिया गया है। महात्म्य कार्तिक महात्म्य, कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अष्टांग योग सिद्धि, यम और नियम प्रथम है। यम अर्थात क्या नहीं करना है, और नियम अर्थात क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस मास में ज्यादा नहीं सोना है, सबसे कठिन बात बताई, सोना ही तो अति प्रिय है। दोनों सोना, दोनों प्रकार के सोना अति प्रिय है, गोल्ड भी प्रिय है और स्लीपिंग भी प्रिय है, सोना। और इस मास में सोना नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे। अर्थात जितनी आवश्यकता है उतना ही सोना है। शास्त्र के अनुसार 5 घंटे की नींद बहुत हो जाती है, किसी को नहीं होता है तो 6 घंटा बहुत हो जाता है। इसके आगे जो सोता है वो भ्रम है, वो अज्ञान है, वो सोना नहीं है, वो माया है। माया उसको बहुत अच्छा, सो जा बेटा सो जा, हाँ 6 घंटे के बाद जो भी कुछ है माया का प्रभाव, हिप्नोटाइज कर रही है माया 6 घंटे के बाद। निद्रा देवी के गोद में हम सोते हैं जो कि माया देवी है। 6 आवर्स नॉट मोर देन 6 आवर्स। 6 घंटा यदि सोना है तो कितने बजे सोएगी और कितने बजे उठेगी? आप ही बताइए, मैं क्या बताऊं? आपको सोना है। 10 बजे सोएंगे, 4 बजे उठेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? 6 घंटे से ज्यादा नींद आती भी नहीं है वास्तव में, यदि आप ठीक ठीक से सोते हो ना, ठीक से एकदम। 10 बजे यदि सोना है ना, 9:30 बजे पहले एक माला जप करो और फिर कोई भी ग्रंथ लो, कोई लीला कथा भगवान की, और उसको पढ़ो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कोई भी ग्रंथ हम लेते हैं पढ़ने के लिए नींद आती है, कोई भी कथा सुनने के लिए लेते हैं नींद आती है। आपको हमने एक प्रश्न एक भक्त का उदाहरण बताया था ना, आपको स्मरण में है? किसी दूसरे भक्त का उदाहरण है पर हम बता रहे हैं। एक भक्त थे, वो भक्त के प्रोग्राम, एक बहुत अच्छे प्रचारक है, उनके प्रोग्राम में हमेशा जाते थे वो प्रचारक। मान लो विरार में गए तो भी वो विरार में जाते थे उनका प्रवचन सुनने के लिए। इधर वो चर्च गेट गए प्रवचन करने के लिए तो भी वो चर्च गेट जाते थे उनका प्रवचन सुनने के लिए। एक दिन वो प्रचारक जो प्रभु जी थे प्रवक्ता, उन्होंने उनको पूछ ही लिया, मैं आपकी प्रामाणिकता पे बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, आपकी गंभीरता, आपकी सिंसियरिटी, जहां मैं जाता हूँ प्रवचन के लिए आप वहां पहुंच जाते हो, कभी विरार तो कभी चर्च गेट, कहाँ विरार कहाँ चर्च गेट। बोले महाराज आप बहुत, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत धन्य है आप। वो बोले भाई क्या हुआ, आपके क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है, बोले मैं कम से कम 10 वर्ष से सारे संसार में जितने डॉक्टर है, अमेरिका से लेके तो जापान तक, सारे डॉक्टरों के पास गया हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती उसका इलाज करने के लिए। इंसोमनिया कहते हैं उसको, निद्रा नाश, अरे ये नीचे झुकता ही नहीं है, आईलिड झुकता ही नहीं, रात रात तक बैठा रहता हूं बैठा रहता हूं बैठा रहता हूं। एक बार आपके प्रवचन में आया मंदिर में, आपका बहुत बढ़िया प्रवचन चल रहा था, ऐसी नींद लग गई, ऐसी नींद लग गई कि मैंने सोचा मैं पूरा संसार ढूंढ के आया हूं, इलाज तो यहीं पे है। तो महाराज आप जहां कहीं भी जाते हैं प्रवचन करने के लिए, मैं आपके पीछे चला आता हूं, मुझे उसमें इतनी सुंदर नींद आती है। ऐसी दशा क्यों है हमारी? प्रवचन कथा श्रवण चिंतन कुछ भी चलने दो, 45 मिनट्स बहुत हो गए। भगवत गीता का ये क्लास है, अपन 1.5 घंटा लेते हैं, है ना? कितना? 1.25 घंटा, 1.5 घंटा होता है, 90 मिनट्स कैपेसिटी से डबल। हाँ, तो दूसरे शुक्रवार को जब हम पूछते हैं तो 90 मिनट्स में का 9 मिनट्स का ही याद रहता है, 81 मिनट्स वाइप आउट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बीच में नींद आती है, बीच में विचार आते हैं, बीच में मन कहीं और भटकता है। मन को ट्रेनिंग नहीं है ना, मन को ट्रेनिंग नहीं है, मन एक्सपर्ट नहीं है, श्रवण में एक्सपर्ट नहीं है, चिंतन में एक्सपर्ट नहीं है। सुखदेव गोस्वामी देखिए लगातार श्रवण कर रहे हैं, लगातार लगातार। बोले आप कहते जाओ महाराज, परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, परीक्षित महाराज देखिए लगातार सात दिन तक सुनते गए सुखदेव गोस्वामी को कहते कि आप नॉन स्टॉप बोलिए, एक मिनट में महाराज बीच में गए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, अरे कुछ भूख लगी होगी, प्यास सारे ऋषिगण पूछने लगे आपको प्यास होगी, कुछ नहीं है प्यास ना कुछ भूख, अनेकों जन्मों से खाते पीते आ रहा हूँ, अभी तक ये पेट नहीं भर रहा है, विचित्र प्रकार का गड्ढा है, इतने जन्मों से यही काम कर रहा हूँ खाने का और पीने का, अभी तक नहीं भरा है, अब मैं इसकी कोई चिंता करने वाला नहीं हूँ, अब तो मैं श्रवण और चिंतन और स्मरण करूंगा। काउंसलिंग में इस बार श्रवण विषय पे हम चर्चा करेंगे, आप सब लोग श्रवण विषय पे थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइए, जो भी कुछ आप पढ़ सकते हैं रविवार को सुनो। श्रवण, ज्ञानी जो होते हैं उनकी ये क्वालिटी, किसको ज्ञानी कहते हैं पिछले काउंसलिंग में किसी ने समझाना, किसको ज्ञानी कहते हैं, अज्ञान की तो बहुत व्याख्या है, ज्ञान की क्या व्याख्या है, देखिए ऐसा हो जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे।
तो यम और नियम इसलिए करना चाहिए, इसके कारण हमारे जितने भी अनर्थ है वो दूर हो जाते हैं, इसलिए जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, किसी का मत कुछ भी होने दीजिए, हमको भगवान के मत से कंसर्न है, जो अपना ऐसे इसका उसका मत लेके आते हैं वो समझो अंधे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जिनको दिख ही नहीं रहा है कुछ, और उनको नहीं दिख रहा है हमको भी नहीं दिख रहा, हम भी उन अंधे के पीछे जाओगे तो कहां जाके गिरोगे, खाई में गिरोगे ना, अंधे को खाई दिखती क्या है, अंधे को खड्डा दिखता है क्या, नहीं दिखता है ना, फिर हम दूसरे ने उसने ऐसा कहा इसने ऐसा किया उसने वो पूछा इसने वो किया, वो सब संसारा संसार अंधकूप अंधे कुएं के जैसा है, इसलिए इसके उसके मत प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, ना इसके उसके मत से प्रभावित होना चाहिए, यदि प्रभावित ही होना है तो भगवान के मत से प्रभावित होना चाहिए, और भगवान के मत से प्रभावित होने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ योग्यता चाहिए, और वो योग्यता है श्रद्धा, और श्रद्धा हमारे अंदर तब जागृत होगी जब हमारे मन को हम ट्रेनिंग देंगे यम और नियम का, यम और नियम का पालन करते हुए जब हम सेवा करेंगे, नियम सेवा, इसलिए कार्तिक मास को कहते हैं नियम सेवा मास, और यह राधा रानी का अर्थात शक्ति है, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान उनको अपना प्रेम गुरु मानते हैं राधा रानी, तो राधा रानी का मास है, और इसमें दामोदर लीला हुई थी, भगवान के उदर को दाम से अर्थात रस्से से बांधा गया था, इसलिए इसको दामोदर मास, ये दामोदर मास है, और इस दामोदर मास की देवी कौन है, अधिष्ठाती देवी कार्तिकी देवी श्री राधा, अर्थात ये दोनों का महीना है, राधा और कृष्ण का ये महीना है, बड़ा ही शक्ति प्रदान करने वाला महीना है, इसलिए कार्तिक व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, हमारे मन को उससे शांति मिलती है, और इस व्रत की विशेषता है कि अल्प अर्चना अल्प पूजा भी यदि इस मास में करते हैं तो भगवान उसका बहुत बड़ा बेनिफिट देते हैं, होलसेल वो सेल चल रही है, दिवाली सेल 10 रुपए में 100 रुपए का माल है ना, 10 रुपए में 100 रुपए का माल, भगवान श्री कृष्ण के लिए इतना सा करो तो भगवान इतना कुछ दे देंगे, दूसरे तीसरे कोई भी महीने में इतना करो तो इतना देंगे, ये महीने में इतना करो तो इतना देंगे, ये मास में 100 रुपए की चीज 10 रुपए में मिलेगी, और इस मास के पश्चात 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में मिलेगी क्या लाभदायक है, इसलिए इस मास में थोड़ी भी यदि अर्चना करती है करते हैं तो भगवत प्राप्ति तक हो सकती है, भगवान श्री कृष्ण की भी प्राप्ति हो सकती है, इसलिए विशेषकर इस मास में करना है, हमारे खाने पीने में नियमितता लाना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं खाना है, प्रसाद ही खाना है, प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाना है, कम से कम एक महीना, नहीं, भगवान को भोग लगा के खाने में क्या दिक्कत है? मान लो हमको बाहर जाना है, बहुत बार भूख लगती है, तो भोग लगा और एक डब्बा अपने बैग में धर लो, पूरा दो चार घंटा खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रसाद ही खाओ, ये इस मास का विशेष नियम है। सबसे पहले खाने पीने में जब हम नियमितता लाते हैं तो शरीर को शुद्धता प्राप्त होती है, शरीर शुद्ध निरोगी होते रहता है, शरीर का प्यूरिफिकेशन होते रहता है, शुद्धिकरण, शरीर को शुद्धिकरण करना है शरीर का, तो प्रसाद के माध्यम से इस मास में कीजिए, बहुत आवश्यक है। और यदि ऐसा करेंगे तो हमको क्या होगा? आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होगा। करना चाहेंगे ना हम आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव? यदि हम प्रसाद ही पाएंगे इस मास में तो हमको आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होगा, और हम प्रसाद ही नहीं पाएंगे और सब कुछ पाएंगे तो हमको क्या अनुभव होगा? जन्म मृत्यु जरा गए, हमको अनेक प्रकार के भयंकर भयंकर माया के भयंकर भयंकर रूपों का अनुभव होता है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम राम राम। ये प्रथम नियम है इस मास में, बहुत महत्व है। क्या? प्रसाद नहीं पाए। दूसरा महत्व का नियम है प्रातः स्नान। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातके स्नानम जनार्दन। कार्तिक मास में हे जनार्दन, हम सुबह सुबह स्नान करेंगे। प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। हे भगवान दामोदर, इस कार्तिक मास में मैं रोज प्रातः स्नान करूंगा। प्रातः स्नान अर्थात कितने बजे? सूर्य उदय के पहले। मान लो जिस दिन बादल है, सूर्य उदय ही नहीं हुआ, उस दिन कितने बजे करते हैं? अब सोचे कि अभी तो बादल है, सूर्य सनराइज ही नहीं हुआ, तो आज तो बादल है, सूर्य का 12 बजे तक उगने वाला है। इसलिए एक नियम, नियम सेवा मास। नियम क्या होना चाहिए? सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे उठकर स्नान करना ही चाहिए। स्नान करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते करते स्नान करना चाहिए। शांति से चुपचाप से स्नान नहीं करना चाहिए, है ना? उससे दो लाभ होते हैं, एक तो अपनी नींद में हो गए तो नींद उड़ जाएगी, कभी कभी वहां तक जाने तक नींद में हो सकते हैं, बाथरूम जाने तक, तो हमारी नींद उड़ेगी, ये तो स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, थोड़ा परमार्थ भी होगा, दूसरे की भी नींद उड़ जाएगी, तो वो भी बोलेंगे और बच गए 5, वो भी थोड़ा प्रयास करेंगे, 2-4 दिन नहीं करेंगे, 5वें दिन करेंगे, ऑलरेडी 2-3 दिन हो गए, कितने दिन हुए? 3 दिन, तीसरा दिन है आज, ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं। तो प्रातः स्नान आवश्यक है, क्योंकि प्रातः काल में सत्व रहता है, प्रकृति सत्व गुण में रहती है, हमारा मन भी सत्व गुण में रहता है, परंतु केवल एक ही बात होती है, केवल हमारा जो बिस्तर है, जो बेड, वही रजसिक और तामसिक गुणों में है। सत्व मन सत्व को कैप्चर करने के प्रयास में रहता है सुबह सुबह, प्रकृति भी सत्व गुण में रहती है, लेकिन जिस बेड पे हम सोते हैं वो कतई नहीं रहता है सत्व गुण में। इसलिए जैसे ही अलार्म बजा 5 बजे का, क्या करना चाहिए? बेड से कूदना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, जंप, 3 फुट लंबी जंप मार देना चाहिए। जंप मार के खड़े जब हो जाएंगे तब फिर सोने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन जब तक बेड पे सोते सोते विचार करते रहोगे, अभी मैं उठूंगा, अभी मैं स्नान करूंगा, अभी मैं उठूंगा, अभी मैं स्नान करूंगा, अभी मैं उठूंगा, करते करते 5:15 बजेंगे और ये विचार से इतने हिप्नोटाइज हो जाएंगे कि फिर सो जाएंगे, है ना? फिर आजू बाजू में देखेंगे, दूसरे लोग तो खर्राटे मार रहे हैं, मैं भी 10 मिनट और सो जाता हूँ, मैं भी 10 मिनट के लिए सो जाऊंगा, फिर क्या होगा? अचानक सूर्य का दर्शन हो जाएगा, फिर सोचूंगा आज नहीं कल से। करते करते कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा और कार्तिक मास 2014 फिर से कभी जीवन में नहीं आएगा है कि नहीं। तो करना क्या है, मन सत्व को लेने के लिए तैयार है, प्रकृति सत्व को देने के लिए तैयार है, बीच में केवल बिस्तर आ रहा है, बेड आ रहा है, इसलिए उस पे से जंप करना चाहिए, कूदना चाहिए, 3 फुट दूर खटाक से खड़े हो जाना चाहिए, तुरंत स्नान गृह की ओर बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे 33 कोटि देवताओं का आपको सहकार होता है कार्तिक में, ये आप कार्तिक में भगवान कृष्ण के लिए कार्तिक मास का, राधा रानी के लिए कार्तिक मास का व्रत करने का प्रयास करते हो, 33 कोटि देवी देवता भी आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको सहकार करेंगे। उनको केवल आपको रोज बोलना है, देवी देवता कृपा करके मुझे सहकार करो मेरा व्रत पालन करने के, वो कहेंगे वो अच्छा कार्य में हम क्यों बाधा डालेंगे। कभी कभी तो ये काम करते हैं लोग, बहुत कम, इसमें हम क्यों बाधा डालेंगे। और मैं मुख्य मुख्य ही बातें आपको बताना चाहूंगा जो अति मुख्य है। सबसे पहली बात क्या है, प्रसाद ही खाना है। दूसरी बात क्या है, सुबह स्नान करना है सूर्योदय के पहले अर्थात 5 बजे, 5 o'clock। यदि कोई 4 बजे उठता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं उठता है तो 5 बजे से ज्यादा लेट नहीं चलेगा। स्नान करने के पश्चात अपना जप संकल्प करना चाहिए, नियम। ऐसे तो हम बहुत जप करते हैं, किसको भी हम तो जप करते हैं, कैसे, कभी 64 माला करते हैं, कभी 2 माला करते हैं, 2-4 दिन कुछ भी नहीं करते, फिर एक दिन 18-20 माला कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ना सब लोग। लेकिन इस मास में नियम से करो और उसी नियम को जीवन भर अपनाओ। नियम से 16 माला जप करो रोज, 16 राउंड मस्ट। और जो फेस्टिवल्स है, जो त्योहार है, उस दिन 25 माला जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, प्रेम सेवा है, टॉर्चर नहीं है, टॉर्चर मत समझिए क्या है, नहीं, प्रेम से। भगवान कृष्ण अर्थात प्रेम, नथिंग एल्स। उनको प्रसन्न करने के लिए हम ये सेवा करने का प्रयास करें, है ना। सो जप अवश्य करना चाहिए, सब लोग जप करते हैं ना, कोई नहीं करते हो एकाद दो तो अभी करना शुरू करें, बहुत अच्छा तिथि है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, बहुत अच्छा तिथि है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, अवश्य करें। और फिर रोज श्रीमद् भागवतम का कम से कम 1 श्लोक तो श्रवण करें, श्रीमद् भागवतम का नहीं कुछ तो कम से कम आधा घंटा श्रवण करें रोज। यदि कोई श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है थोड़ा सा, इतना सा, कितना, इतना सा, आधा घंटा, तो उसको रोज 10,000 यज्ञ करने का फल मिलता है। कितने, केवल कार्तिक में है ये फैसिलिटी, केवल कार्तिक में, ये सेल केवल कार्तिक के लिए है। बाद में 10,000 बार भी श्रवण करोगे ना तो एक यज्ञ का भी फल नहीं मिलेगा फल मिलेगा जरूर, पर इतना डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, फल तो मिलेगा ही, श्रवण का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। परंतु इस मास में भगवान ने अपना एकदम गोडाउन ओपन कर दिया, श्रवण भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से 10,000 यज्ञ का फल मिलेगा, लेकिन रोज। कोई बोलेगा कल मैंने किया था, आज नहीं, कल मैंने श्रवण किया 10,000 यज्ञ का फल ले लिया, आज कुछ नहीं किया, 10,000 बहुत हो गए, दूसरे दिन नहीं किया ना तो जो कल मिला वो कट हो जाता है क्योंकि ये महीने की बात है। ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब ये आप महीना भर करोगे पूरा, जब से आपको ज्ञात हुआ, मतलब आज से ज्ञात हुआ ना तो आज से पूरा महीना, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया, नहीं, फिर सब जो भी किया खत्म, ऐसा है। बताओ करेंगे, किसी का भी आवाज नहीं आया, करेंगे कि नहीं करेंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे
हरे। करना चाहिए ये श्रवण। यदि आपने श्रीमद् भागवतम यदि पढ़ा, पढ़ने से क्या लाभ होगा? ये तो श्रवण किया, मान लो थोड़ा पढ़ भी लिया एक आध श्लोक 20 मिनट, तो 18 पुराण रोज पढ़ने का जो लाभ मिलता है वो रोज लाभ मिलेगा। 18 पुराण पूरे के सारे 18 पुराण, संपूर्ण पुराण पढ़ने का जो फल प्राप्त होता है वो एक दिन एक श्लोक पढ़ने से, श्रीमद् भागवतम का कार्तिक मास में एक श्लोक पढ़ने से फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी।
और फिर यदि रोज भगवद गीता की कोई चर्चा करे, थोड़ी देर के लिए क्यों ना रोज अपने घर में करे, किसी से भी, या किसी से भी करे, नहीं सोचे कि सामने वाला बोर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपन तो अपने बेनिफिट की बात करो, चर्चा करना है अपने, चर्चा करो तो उससे क्या लाभ होगा? उससे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान का साक्षात दर्शन भी प्राप्त होगा, और जीवन में जीवन पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस चक्र से मुक्ति भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम।
नाम रूप गुण लीला, भगवान के नाम रूप गुण लीला की स्तुति करोगे, नाम नियम से जप करेंगे तो 100 पीढ़ियों को मुक्त कर देंगे, 100 पीढ़ियों को मुक्त करने का भी लाभ इसमें प्राप्त होगा। नाम रूप गुण लीला, इसमें से किसका भी स्तुति करते, चारों की स्तुति करते, भगवान के नाम की स्तुति करते, भगवान के रूप की स्तुति, भगवान के गुणों की स्तुति, भगवान के लीलाओं की स्तुति, भगवान की लीलाओं की स्तुति करने के लिए भगवान की लीला का ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, भगवान की लीलाओं की जानकारी होने के लिए भगवान के धाम में यात्राओं में जाना चाहिए। कभी भी यात्रा का नाम लेते हैं तो सारे पीछे हट जाते हैं, बाकी यहां वहां तो बहुत घूमते हैं, यात्रा में जाना चाहिए, इसलिए हमने यात्रा का आयोजन किया है, वृंदावन धाम यात्रा, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से भगवान की श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ानी है तो धाम यात्रा आवश्यक है, धाम की महिमा जानना आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम।
रोज भगवान को मंदिर में जाके भगवान को 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, तुलसी महारानी को 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, रोज सुबह शाम घर में तुलसी जी के पास, भगवान के पास दीप का दिया अर्पण करना चाहिए सुबह और शाम, रोज दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, जितने भी आचार्य गण हैं सभी को प्रणाम करना चाहिए रोज, जितने भी नाम हमको स्मरण होते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र बोल बोल के रोज कम से कम 21 दंडवत प्रणाम करना चाहिए, 1 से 8 करते हैं तो बहुत अच्छा, जिनके पास वो सारे आचार्य के नाम और भगवान की लीला स्थली, भगवान और भगवान के रूप सारे जो लिस्ट है वो सब पढ़ पढ़ के, वो हमने पिछले वर्ष दिया था, अभी इस वर्ष किसी के पास हो तो सब कॉपी करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, सभी का नाम उच्चारण करते हुए वो कर सकते हैं, यदि संभव हो तो तुलसी अभिषेक करना चाहिए, 1 लाख तुलसी अभिषेक करते हैं बहुत से लोग, तो 10,000, 11,000, 1,000, 108 जितना आप कर सकते हैं तुलसी अभिषेक करना चाहिए, भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते एक एक तुलसी भगवान के चरणों पर अर्पण करना चाहिए। तो क्या क्या हुआ कंपल्सरी? पहला प्रसाद ही खाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, प्रसाद ही खाना चाहिए। दूसरा प्रातः स्नान, सूर्योदय 5 बजे स्नान, जप, जप नियम से जप 16 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन, फिर भगवद गीता का चर्चा,
भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्तुति स्तोत्र। तुलसी महारानी को चार प्रदक्षिणा, भगवान को चार प्रदक्षिणा, मंदिर में चार प्रदक्षिणा, दीपदान दामोदर अष्टकम और दीपदान रोज सुबह शाम घर में भगवान के पास और तुलसी जी के पास दीप अर्पण करना होगा, तुलसी अभिषेक करना होगा। इस मास में आप मंदिर में दान देना या भक्तों को सेवा करना ये भी कर सकते हैं, आचार्यों को दंडवत प्रणाम करना, कहीं यात्रा में जाने का संकल्प करना। इसलिए तो हमने कार्तिक में संकल्प किया है, तो वो यात्रा का फल हमको कार्तिक में मिल जाएगा। उड़ीद दाल वर्ष, हाँ वो तो पहले दिन से ही होना चाहिए। उड़ीद दाल वर्ष, उड़द दाल नहीं खाना चाहिए। और बस श्रवण भी और चिंतन भी, ये कोई सीढ़ी में हो सकता है, सीढ़ी में या मंदिर में जाके जो भी पॉसिबल होता है। मंदिर में जाना संभव नहीं है तो घर में सीढ़ी में सुनिए। प्रभुपाद जी के भागवत के ऊपर बहुत कथाएं हैं, वर्तमान आचार्यों के बहुत सी कथाएं हैं, महाराज जी की वो सब सुनिए, भक्तों की बहुत सारी कथाएं हैं वो बताया हमने, कितना गुना मिलता है वो बताया हमने। 10,000 गुना मिलता है, 1,000 नहीं। तुलसी अभिषेक, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करना, भगवान को सामने रखना है, या विग्रह हो तो विग्रह, नहीं तो पिक्चर के रूप में जो भगवान सामने हैं उनको हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, फिर तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए, फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए, फिर अर्पण करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। भगवान के सर पे नहीं करना चाहिए, भगवान बुझ जाएंगे पूरे, भगवान के चरणों पे कीजिए, है ना। या कहीं फोटो रखा हुआ है तो भगवान के सामने ऐसा कुछ वो जैसा चौरी है, क्या कहते उसको, ये रखा है ना चौरंग, क्या बोलते हिंदी में उसको, पाठ चौरंग चौपाई जो भी कुछ बोलते, वो उसको सामने भगवान के रखते हुए उसके ऊपर स्वच्छ नया कपड़ा रख के अर्पण करना चाहिए, भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए। 108 कीजिए, 1,008 कीजिए, 10,008 कीजिए, 1,08 कीजिए, कितना भी कर सकते हैं, कम से कम 108 कीजिए, जितने ज्यादा आप कर सकते हैं उतना कीजिए। रोज करने की, रोज करते हैं तो अच्छा है, रोज नहीं होता है तो कोई महीने में बहुत सारी बहुत अच्छी तिथियां आती है, पूर्णिमा आती है, गोवर्धन पूजा आती है, भोलाष्टमी आती है, गोपाष्टमी आती है, दीपावली आती है, ठीक है। आचार्य को प्रणाम करना चाहिए, आचार्य का नाम लेके तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आपके पास लिस्ट है, लास्ट ईयर दिया था मैं, होगी आपके पास, ढूंढ लीजिए, नहीं हो तो फिर मैं आपको दे दूंगा, पर वो लिस्ट आपके मैं अभी नहीं ला पाया किसी कारण से, मैं तो सभी को देते, वो लिस्ट है, वो सब नाम लेने का एक दंडवत, मैंने लास्ट ईयर बताया था काउंसिलिंग में से, एक सौ सत्ताईस दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पहले कुछ दंडवत प्रणाम कीजिए, बाकी बैठ के ही सब बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सबसे बड़ा महान। तो इस प्रकार से आप अभी दो दिन तो गए, जो गए सो गए, पर अभी नियम से जो हमने कहा है उसका नियम से पालन कीजिए। क्या नहीं करना है, केवल एक ही बात मैं कहूंगा, ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, एक मुख्य बात है जो नहीं करना है, प्रज्वल। ये महीने में आप संकल्प शपथ लीजिए किसी भी तीसरे व्यक्ति की चर्चा नहीं करना, ये ऐसा वो वैसा, ये खराब वो अच्छा, कुछ नहीं, एक महीना कम से कम इसको टाल दीजिए। इसलिए इसमें भगवान ने शब्द क्या कहा है, ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या के कारण ही व्यक्ति प्रजन्म करता है, दूसरा कोई कारण नहीं, सुप्त ईर्ष्या रहती है कभी कभी, पर ईर्ष्या ही होती है जिसके कारण इसकी उसकी चर्चा करते रहते, जिसकी प्रशंसा करना है तो करो, पर किसी की प्रजल्प किसी की बदनामी मत करो, किसी के प्रति कुछ
अपराध होता है। प्रशंसक एनी टाइम कर सकते, उससे हमारा भी शुद्धि करेंगे। हरे कृष्ण, शिल रूपाल की जय।